प्रभु, राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
यानी ये है 80 पृष्ठ पर चल रहे हैं जीवन चरित्र के। यानी बुक की जी अभ्यास के समय देखो यह यहां तक कि किसी जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक की जी कोई ट्रांसफार्मर था या कोई रेडियो स्टेशन था उसमें बोल रहा था, और कितनी बात कर सकते थे। तो वो भूता था उसमें बुक्की जी के जरिए दरियाफत कर लिया करती थी। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कमाल हुआ करता, हम कलाम हुआ करती थी, उससे बोलिया करता हूं। और कितने बार को आकाशवाणी करा था कौन सा, फिर उक्का कितने भी आकाशवाणी आ। इस नियाजमंद को भी यानी लेखक प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, मुझे भी जब भीड़ पड़ के समय यानी को आपत्ति आ जाती, घबराहट होती थी, तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी। तब बुक्की जी के जरिए यानी बुक्की का घर होता था जाके, फिर स्वामी जी उसमें बोला करता, बुक्की में स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, बुक्की जी के जरिए स्वामी जी का हुक्म लिया करता था, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी पर तरह राय साहब ने भी मौज की थी बुक्की जी के जरिए, से दो चार बार हुक्म हासिल किए थे। अरे तेरा गजब राय साहब सालग्राम, इसने यू राधा स्वामी पंथ पनपनाया गणा, और वो भी कह रहा है कि उसने भी कभी कोई प्रश्न करना होता था तो बुक्की का बोला करता, और बुक्की महाराज जी बोला करता शिवदयाल जी, वो पक्का भूत बन रहा था ना। तो महाराज जी उस शेठ प्रताप सिंह तम हम कमाल के अलकलाम क्यों ना होया, और सालग्राम से क्यों ना बोला, ये लाखों लोग थे उन को ना बोला, क्योंकि वो भूत बनकर बुक्की में बोलता था। कहते हैं झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उधर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है आज परम गुरु पीवे। जग झूठे गुरु आ मर गए वो हो गए भूत बसान, ये शमशान के अंदर भूत बने बैठे हैं जो नकली गुरु हैं। तो पूर्ण परमात्मा आज का जो सत्संग सुबह से ही चल रहा था वो सतगुरु के ऊपर है। कहते हैं सच्चा सतगुरु जब मिले तब झंझट मिटे जीव, पूरे संत से सच्चा सतगुरु जब, यानी सतगुरु सच्चा क्यों कहा, क्योंकि झूठे सतगुरु फीत गणे ला रहे हैं, और सच्चा सतगुरु यानी वास्तविक जो सतगुरु आएगा वो आपको पूरा समाधान भी बताएगा, पूरा ज्ञान भी देगा। तो उस सतगुरु के विषय में क्या बताया था सुबह के सत्संग में, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खाने। चार खानी में भरमते कभू न लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। सात समुंदर की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंद। तो क्या बताते हैं कि जब साचा सतगुरु पूर्ण संत नहीं मिलते तो के दुर्गति होती, जैसे शिवदयाल जी की हो रही और सुबह आपको दिखाया था महावीर जैन की हो रही, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, ये भगवान गिनती नहीं, और फिर 363 पाखंड मत चला कर मेरा ये दुनिया और भ्रमित कर गया लास्ट में सारे, और उस तो भी नीची कैटेगरी में जाओगे। तो पुण्यात्माओं, तुम्हारा सौभाग्य है कि परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया ये अमृत ज्ञान आज फिर प्रकाश में आ रहा है। ये ऐसा ज्ञान है, कबीर जी कहते और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब काइब करता चले मैदान। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी ने अपनी जानकारी स्वयं ही आकर के इस काल के लोक में प्रदान की, तत्व ज्ञान का प्रचार किया, उसको लिपिबद्ध करवाया जो आज इस बिचली पीढ़ी के काम आया। परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें भक्ति विधि को समझाया बहुत ही साधारण लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण भाषा में, जिसको संत भाषा कहते हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, गद्य और पद्य भाग के माध्यम से, बहुत ही सिंपल वे से, साधारण तरीके से वो अनमोल ज्ञान हमें दिया जो वेदों और गीता आदि पवित्र सदग्रंथों में लिखा हुआ था। ये पवित्र सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे थे और हमारे पूर्वज श्रद्धालु जिस समय परमात्मा यहां आए आज से 600 वर्ष पूर्व, वो संस्कृत भाषा से अपरिचित थे। संस्कृत भाषा के पढ़ने का केवल एक वर्ग को अधिकार था जिसको ब्राह्मण कहते थे। उन संस्कृत के पढ़ने वालों को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था और सृष्टि रचना को केवल परमात्मा ही बता सकता है, क्योंकि परमात्मा की रची हुई विधान को, परमात्मा के रची हुई सृष्टि को वो ही बता सके है, दूसरा तो अटकल लगा सकता है, गपौड़ पेल सकता है। तो परमात्मा ने प्रत्येक युग में आके अपने इस तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा। परमेश्वर जी कहा करते थे कि वेद हमारा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर जी जो बनारस में काशी शहर में एक दानक की भूमिका कर रहे थे, एक जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, और साथ में वो तत्वदर्शी संत बनकर अपना प्रचार भी, अपने मूल उद्देश्य को भी कर रहे थे। उसमें परमेश्वर कहा करते थे कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरे सतलोक में तुम नहीं जा सकते जहां पूर्ण मोक्ष होता है। तो उस समय के वो नकली गुरुओं ने, जो नकली ऋषियों ने, महर्षियों ने, उन तत्व ज्ञान हीनों ने परमेश्वर कबीर जी की बहुत बुराई की जन साधारण में, कि वो अपने आप को खुदा कहता है, वो अपने आप को परमात्मा कहता है, वो कहता है मैंने ही सारे ब्रह्मांड रचे हैं और वेदों में मेरी ही महिमा है। तो वो नकली लोग कहा करते थे, ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण, कि ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, इसको क्या पता वेदों और गीता में क्या लिखा है, ये झूठा है, कपटी है, इसकी बातों में बहकावे में मत आना, ये वेदों और गीता के विरुद्ध बोलता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा इसी उद्देश्य से आए थे कि ये नकली लोग इस संस्कृत की आड़ में पूरे मानव समाज को मूर्ख बना रहे हैं। इन ये न तो पवित्र पुराणों को समझ रहे हैं और न ही पवित्र वेदों और गीता जी को समझ रहे हैं। ये दंत कथा लोक वेद सुनाकर सारे मानव समाज को काल के जाल में फंसाए बैठे हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपना ज्ञान साधारण भाषा में बोला, जिसको जन साधारण आम व्यक्ति समझ सकता है। उसमें सभी लैंग्वेजों का जो भारतवर्ष में प्रचलित थी उस समय, फारसी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और भी जो आसपास क्षेत्र में जो बोली जाती थी, सभी भाषाओं का उसमें समावेश किया हुआ है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक क्षेत्र का, भारतवर्ष या इंडिया का, पूरे विश्व का व्यक्ति भी समझ सकता है। उस अनमोल ज्ञान को इन व्याकरण के प्रभुओं ने, इन व्याकरण के ऊपर अड़े हुए अज्ञानियों ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि कबीर ने तो बोलना भी ना आता है। और भी जो परमेश्वर से अपरिचित महापुरुष थे, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, मुलुकदास साहिब जी, इनकी वाणी को भी रिजेक्ट कर दिया कि इनको उच्चारण भी नहीं करना आता, निर्भय को निर्भव निर्भव पता नहीं क्या बोलते हैं। अरे भले आदमियों, एक बालक तोतला बोल रहे, तोतला बोलता है, हकला कर बोलता है, लेकिन उसकी माता उसके सारे कोड वर्डों को समझ लेती है, उनके परिवार वाले सारे समझते हैं, अभी वो दूध पीने की चेष्टा कर रहा है या पानी मांग है या भूख लाग रही है या कोई और वस्तु की डिमांड है। और तोतला बोलता बालक माता पिता को और गणा प्यारा लग गया, क्यों छोटा छोटा होता उसमें। तो ऐसे ही परमात्मा ने वो यथार्थ ज्ञान जो सच्चे हृदय से और सत्य कहा गया होता है, जिसको ये हम पढ़ते और बोलते और सुनाते हैं, उसको परमात्मा अत्यधिक प्रसन्न होता है, बजाय जिन नकली ऋषियों महर्षियों के अनुभवों की पुस्तक हम पढ़ते हैं उसमें कोरी झूठ लिख रखी होती है। तो उनके पढ़ने से, उन पुस्तकों के पढ़ने से प्रभु नाराज होता है, चाहे वो कितने ही शुद्ध अक्षरों में लिख रखे। अब झूठ को चाहे कितना शुद्ध अक्षरों में बोल ले, वह झूठ ही है, वह हानिकारक ही है। तो परमात्मा ने वो ज्ञान हमें आकर बताया था, क्या कहा था भाई, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। के गुरु जी के बिना, बिना गुरु के आप दान देते हो, आप नाम जाप करते हो, ये व्यर्थ है। यदि मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो अपने इतिहास, अपने सदग्रंथ, वेदों और पुराणों को देख लीजिए। फिर परमात्मा कहते थे भाई, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हो भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। जैसे मानव समाज भ्रमित हो चुका है, जिस भी संत या पंथ से वो संबंधित हो जाता है, जहां उसके विचार सुनता है, प्रत्येक के विचार अपने अपने न्यारे न्यारे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे राधा स्वामी पंथ ये हिंदुस्तान में एक नंबर में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है, एक नंबर पर है, और इनका भी विधान यही है, कबीर जी की वाणी पढ़कर ये कहते हैं कि वक्त गुरु का होना अति आवश्यक है, ये ठीक बोलते हैं, और ये भी कहते हैं कि वक्त गुरु नहीं है जिनका, वो उनकी साधना व्यर्थ है, वो काल के एजेंट, काल के मुख में जाएंगे। तो श्री शिवजाल जी महाराज जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। तो ये तो वहीं से ही बात बिगड़ दी, आगे से नकली गुरु बनाए रहो, एक दूसरे ने क्या लाभ हुआ से। तो यहां भी फिर विचलित हो जाता प्राणी, जब उसको तत्व ज्ञान से परिचित होता है वो, कि अभी शिवजाल जी ने कोई गुरु नहीं बनाया, इसीलिए तो भूत बनकर और बुक्की में बोलिया। तो पुण्यात्माओं, कोई कहता है गुरु की आवश्यकता ही नहीं, सब अध्याय कर ले, कोई कहता है कोई एक गुरु बना लेना चाहिए, गुरु के बिन मोक्ष नहीं। अरे भले आदमी, फिर क्या उदाहरण देते हैं कि नारद ने झीमर गुरु बनाया था, झीमर जो मछियारा था, मछली पकड़ा करता, और उस कालू झीमर ने उसका उद्धार कर दिया। तो यहां आकर डट गए कि कोई किसे ने गुरु बना ले, गुरु होना चाहिए, नहीं, ये भूल है इंसान के। गुरु पूरा हो और चेला भी आखिरी सांस तक मर्यादा में रहे, तब मोक्ष होता है। अब कालू झीमर कौन था, इसके इतिहास से परिचित नहीं है। जैसे पहले एक ब्राह्मण जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति डाकू हो गया, और डाकू हो गया तो बहुत भयंकर डाकू हो गया, प्रसिद्ध हो गया, उस क्षेत्र में कोई नहीं जाओ, उस वन में जहां वो रहता था। कहते हैं एक बार सप्त ऋषि उधर चले गए और उस डाकू ने कहा कि तुम रुक जाओ, रुको तुम। वो क्या करता था, पहले मारता था और पीछे लूटता था, और काट के उंगली कहते हैं अपने गले में टांग लेता था कि मैंने कितने आदमियों को मार लिया गिनती करने के लिए। तो महर्षि नहीं रुके, सप्तऋषि नहीं रुके, चलते रहे। फिर उसने कहा रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब ऋषि कहने लगे ले भगत हम तो रुक गए, तू कद रुकेगा, हम तो रुक गए, क्योंकि उन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना किया, नहीं तो उसकी तब शकल देखते ही गिबत जा करती इंसान की। तब उसने देखा कि तो बड़े धड़ाके से बोल रहे हैं, उसके अंदर का वो शत्रु जो खुरापात था वो दब गया, एकदम सुन्न हो गया वो। उसने पूछा क्या बात, कि हम तो रुक गए, तू कद रुकेगा ये जुल्म करने से, क्या तू ये जुल्म जो कर रहा है इसके तेरे घरवाले हिस्सेदार हैं, जो तू पाप कर रहा है क्या तेरे घरवाले, तेरी पत्नी, तेरे पुत्र इस पाप को डिवाइड कर लेंगे। वो कहने लगा कि हां करेंगे वो, क्योंकि मैं यहां से लूट कर धन ले जाता हूं, वो मेरा परिवार पोषण हो रहा है, वो मेरे पाप के भागी होंगे। तो ऋषियों ने कहा कि नहीं तेरी भूल है, पहले घर पता करके या फिर हमें मार देना, लूट लेना हमारे पास जो रखा है। तो उसने कहा कि तुम भाग जाओगे, ऋषियों ने कहा कि हमें बांध दे प्रत्येक वृक्ष के, उसने न्यारे न्यारे सातुओं को अलग अलग बांध दिया पीछा हाथ करके, घर गया। घर जाके उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो ये पाप कर रहा हूं क्या आप मेरा इसमें सहयोग देंगे, ये पाप के भागी बनोगे। वो कहने लगी मैं पाप की भागी नहीं बनूंगी, क्योंकि आप मेरे पति हो, मुझे इस वचन के साथ आप लाए थे कि आप मेरे घर संभालना, बच्चों का पालन करना, मैं कुमा के लाऊंगा। अब मेरे लेखे तू मजदूरी कर, मेरी तरफ से चाहे तू डाके मार, मैं अपना काम कर रही हूं, इस पाप का भागी तू होगा। फिर बच्चों से पूछा, बच्चे भी कोई 10 वर्ष का, कोई 12 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, और पहले सभी ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजा करते थे ऋषियों के पास शिक्षा देने के लिए, लेने के लिए। तो गुरु लोग तो शिक्षा अच्छी ही देते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, हम आपके किए हुए पाप के भागी बिल्कुल नहीं होंगे, आप अपने कर्मों के पास स्वयं बैठोगे। हम जब तक नाबालिग हैं तब तक हम आपका फर्ज हमें पालने का है, चाहे किसी तरह पालो, और जब हम बालिग हो जाएंगे, अपनी कमाई करने लग जाएंगे, तेरे अन्न को छुएंगे नहीं। अब उसने सोचा भैया तो बात बिगड़गी, ये तो सारा एक काम मेरे ऊपर लाद दिया इन्हें, तो उसी से मैं वापस आ गया, उनके चरणों में गिर गया, चरण पकड़ दिए, कहा प्रभु मेरा उद्धार करो। अब जैसा भी उनको समाधान था, उनको बता दिया कि बेटा भक्ति कर, डट कर साधना कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो कहते वो बुराई त्याग करके फिर महर्षि की पदवी पाया। इसी प्रकार एक कालू झीमर था, एक कालू नाम का मछियारा था, और वो इतना बेसबरा था, इतना बेईमान था, मछियां अलग अलग वहां से पकड़कर दूसरे तालाबों से जाल डालकर पकड़ के लाता था, शहरों में बेचता था और खुद भी खाता था, बच्चे भी थे उसके, संतान थी। जिस राज्य में वो कालू झीमर रहता था, उसके पड़ोसी राज्य में एक बहुत ही एक नेक आत्मा धर्मात्मा राजा था। उसने अपने पूरे राज्य में हिंसा बंद करवा रखी थी, और कोई हिंसा करता था उसको बहुत भयंकर जो है ना दंड देता था, जिस कारण से उस राजा के तालाबों में कोई भी मछलियां नहीं पकड़ता था, और उसके तालाबों में अच्छी मोटी मोटी स्वस्थ मछलियां थी। अब उस बेईमान ने उस अपने क्षेत्र की तो सारे तालाबों की वह मछलियां ढोक बेच दी, वहां तो रहा नहीं कोई सामान उसके लिए। फिर उसने देखा पड़ोसी राज्य का तालाब में बहुत मोटी मोटी मछली है, तो उसने ये भी पता था कि यहां के राजा ने इस पर बैन लगा रखा है, इसलिए उसने सोचा वक्त से उठकर जाऊंगा। थोड़ी थोड़ी सर्दी सी थी, और वक्त से सवेरे यानी 4 बजे वहां जाकर जाल डाल दिया, थोड़ी थोड़ी गर्मी जैसे 4-5 बजे उसने जाल डाल दिया, तो उसको कुछ ठंड सी महसूस हुई, उसने वहां से फूस फास तोड़कर और आग जलाई, आग जला के और शरीर को सेका तापा, और उसने कैसी वेशभूषा थी उसकी, एक दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पर ओले बोले बाल पड़े, बड़े बड़े बड़ी बड़ी दाढ़ी, शरीर पर एक लंगोट बांध रहा था पानी में प्रवेश करने के लिए, यही बांध कर घर से गया था वक्त से कि जल्दी आ जाऊंगा मछलियां पकड़ के। तो वो आग से सेक कर अपने शरीर को फिर थोड़ी सी देर में फिर मछलियां पकड़ने लग गया। इतनी देर में क्या हुआ कि कुछ रोशनी सी हो गई, सूर्य उदय होने वाला ही था। उधर से क्या हुआ कि उसी नगरी का राजा जिसने वह बैन लगा रखा था, वो राजा सुबह सुबह हाथी पर सवार होकर और सैकड़ों सैनिकों के साथ, अंगरक्षकों के साथ एकदम वहां प्रकट हो गया, यानी ऐसा मोड़ मुड़ता था रास्ते का, ऐसे एकदम उस तालाब के साथ मुड़ गया। तालाब वहां से ज्यादा जो है ना 10 एकड़ की दूरी पर होगा। हाथी की गले में एक घंटियां बंधी होती है, वो एकदम मुड़ते ही घंटी की आवाज उसके कानों में पड़ी, कालो जी मर गए। उसने सोचा तो राजा आगर आज मर गया तू, तेरे पूरे परिवार ने मारेगा। अब उसने देखा कि राजा बड़ा धार्मिक है और कोई विकल्प नहीं है, तेरी जान बचने का भाग भी नहीं सकता, सैनिक साथ है। तो उसने क्या किया कि अपने शरीर पे वो जो राख बनी हुई थी, अग्नि जला रखी थी, सारे शरीर पे राख मसल दी, लंगोट बांध रहा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, सिर पे केस बड़े बड़े थे, और डरता बैठ गया आंख मीच कर धुने का, वो धुना सा बन गया उसका, वो आग जलाई थी उस पर बैठ गया उसके पास। अब राजा निकट आया, जब उसकी दृष्टि पड़ी कि भी तालाब के आसपास साधु संत ही बैठा करते हैं, और जो उस कालो ने वो मछलियां पकड़ रखी थी वो जालबीर मछली भी तालाब में फेंक दिए। तो राजा ने सोचा हे भगवान, आज तो बड़ा सुबह सुबह साधु के दर्शन हुए, आज बड़ा शुभ दिन निकला मेरा। कबीर परमात्मा भी कहते हैं पुण्य आत्माओं को संत के दर्शन परमात्मा के तुल्य होते हैं, साधु दर्शन राम का मुख पर बस है सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के वही परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी बाकी के दिन बर्बाद। अब राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और सुबह सुबह तो और ज्यादा निर्मल आत्मा होती है। उसने जब देखा वो थोड़ी सी आंखें खोल लो बंद कर लेके राजा आगे टप गया, यही आवे है। राजा ने उसके सामने जाके हाथी रुकवा लिया और हाथी के एक पौड़ी लगवा दी, और नीचे उतरने के लिए व्यवस्था होती है, पौड़ी लगवा दी। अगर आज संत के दर्शन करूंगा, चरण छूंगा, कुछ दान दक्षिणा दूंगा। अब उसने कालो जी मन ने सोचा आज मर गया भाई तू, तो यो तो आ गया तेरे पास। उसने सोचा ये और कोई तरीका नहीं है, आंख नहीं खोलनी चाहिए, कुछ भी कहे जा, बस तगड़े आंख बंद कर ली और एकाग्र डरते का एकाग्र चित हो गया। कुछ पिछले पुण्य होते हैं जो परमात्मा ऐसे सर्कमस्टांस बनाता है, पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले ही पुण्यों से ऐसे कुछ माहौल बनता है जो जीवन में परिवर्तन आता है। वो पिछले जन्म का बहुत अच्छा पुण्य आत्मा था, लेकिन काल इब इस जन्म में ऐसी जगह फिट कर रहा था उसने, उसके निरेक्रम फुड़वावा था, पुण्यों को बर्बाद करवावा था और पाप इकट्ठे करवा रहा था। तो पिछले पुण्य के आधार पर उसका एकदम एकाग्र चित हो गया डरते का। अब राजा ने आवाज लगाई, महाराज नमो नारायण, महाराज नमो नारायण। पहले तो डरता ना बोला, फिर उसका पिछले संस्कार वश सुरती चढ़ गई। अब राजा ने सोचा भी साधु संतान के साथ गढ़ा नहीं बोलना चाहिए, या अपने डिस्टर्बेंस ना हो जाए इनको। तो उसने पांच असरफी, पांच लोहे की मोहर, यानी दो दो तीन तीन तोले की हुआ करती मोहर एक, तो ऐसे वो सोने की मोहर दान दक्षिणा रूप में उस दोने के ऊपर रख दी। चरण छू के मत्था टेक कर राजा चला गया। अब उसकी वो समाधिस्त हो गया। अब उसकी पत्नी को पता था कि आज मेरा पति बहुत खतरे की जगह गया हुआ है और लेट हो गया, क्यों नहीं आया। वह बाट इंतजार करके घर से चली, तालाब जिस तालाब पर उसने बताया था वहीं पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि यू तो बाबा जी बन गया, समाधि लाए बैठा है, और इसने नो बीडर को ना कोई, या तू कैसे बैठा है, कोई आ गया तो तुझे पकड़ देगा। उसने पकड़ कर उसका पाछे तन जाकर उसका कमर में दोनों हाथ मारे न। वो कहने लगी तू मर रहेगा के खड़ा हो ले, चल अपने घर न, और सारा दिन खो दिया तेने, ऐसे है राजा आ गया था कोई आ गया सैनिक तो तुझे पकड़ लेगा। वो डर गया एकदम, और उन्होंने कहा मत है आज आज आया था महाराज, आज के बाद कदे नहीं आऊं, दोनों कान पकड़ू। तो वह नौका है तो क्या कह रहा है खड़ा वो दूसरे देखा उसकी पत्नी है। वो कहने लगा वो राजा कहां गया सैनिक कहां गए। वह समझे नहीं है कि बात क्या घटना घट रही इसके साथ। फिर उसने देखा नीचे 5 असरफी सोने की दोने पर रखी। फिर उसका दिमाग की सुई घूमगी राजा ने तो मुझे साधु मान लिया और मेरे आगे माथा टेक्या और 5 असरफी सोने की दर गया। अब उसने विचार किया कि हे भगवान मैं तो नकली संत बना था और नकली संत बनने से भी इस भोपाल ने भी मेरा आगे माथा टेक दिया। जब मैं असली संत बन जाऊं तो ना जाने के होगा। दृढ़ निश्चय कर लिया प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद में वह प्रतिज्ञा तो पहले कर चुका था ये भगवान आज जान बचा दे जिंदगी में कदे मछली नहीं पकड़ू आज मेरी जान बचा दे मजदूरी करके खाऊंगा। वह तो प्रतिज्ञा वह करवा ली थी भगवान ने पहले उससे और फिर उसके अंदर ये और प्रेरणा होगी कि मैं तो नकली संत बना था और भय मान्या भोपाल। तो उसने सोचा कि भी अगर ये सच्ची साधना करूंगा तो पता नहीं क्या होगा भगवान क्या क्या के कर देगा हमारे लिए। और 5 असरफी दर गया 5 असरफी तो 10 साल का गुजारा था उनका। उस दिन के बाद उसने मछली पकड़ना बंद कर दिया और अपनी पत्नी से कहने लगा ले जा भगवान ये उतरा साजबाज ये पैसे भी तू ले जा और आज के बाद मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। घर ना आ गई दोनों जने। अब उसकी पत्नी कहे कि काम करे बिना नहीं गुजारा होया करता और बालकाली बात मत कर जा मछली पकड़ के ला। वो जाल दे दे उसने रोटी बांध के साथ रख दे वो जावे जंगल में बैठ जा रोटी खा के सामने खाली जाल लेके घर आ जा। वह रोज लड़े और वो रोता फिरे वहां जल इधर उधर हे परमात्मा हे भगवान मुझे दर्शन दे हे परमात्मा किसी तरह दया करो। तो वो तड़फ कर रहा था साधना कर रहा जिसा उसने ओला बोला ज्ञान था भक्ति करे अपना मंत्र जो भी नाम था वो बंड है परमात्मा बड़े दयालु है कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो पूर्ण परमात्मा आगे वहां एक साधु रूप बना के और कहने लगे बेटा क्या कर रहा है तू। उसने सारी कहानी बता दी महाराज जी मेरी गल ऐसे ऐसे बनी और मैं भगवान प्राप्ति करूंगा मैं भक्ति करना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने कहा बेटा गुरु के बिना संत गुरु होना चाहिए आपका वैसे साधना करने से कोई लाभ नहीं होता। तो उसने कालू जी मर ने कहा भगवान अब गुरु कौन है कहां जाऊं किसको गुरु बनाऊं। तो परमात्मा ने कहा भी मैं तेरे को उपदेश दे दूंगा तू भक्ति कर लेना अगर दया कर दो प्रभु। तो परमात्मा ने उनको वो मंत्र दिया वो साधना करने लग गया। कुछ ही दिनों में वो तो कुछ पहले पुण्य होते हैं बहुत ही अच्छा भक्त और सेवक बन गया। तब परमात्मा ने कहा बेटा अब कोई भी जिज्ञासु तेरे पास आवे उसकी सारी बुराई छुटवा कर तू उपदेश दे दिया करिए। अब इस तरह उस कालू जिमर को गुरुपद प्राप्त हुआ था। और ये दंत कथा सुनाने वाले कहते हैं कि नारद ने जिमर गुरु कीन्या और कहां ज्ञान में हो गया हीना। नारद ने उस जिमर यानी मछियारे को शिकारी को गुरु बना लिया था बस गुरु हो कि साय हो वो तो शिकारी था फिर भी नारद का उद्धार हो गया। नहीं उससे वो शिकारी नहीं था वो महापुरुष था। तो पुण्यात्माओं ये लोक वेद हम सुन रहे थे इस तत्व ज्ञान ना होने से हम ऐसे ही अटकलों पर अड़े रहे। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि पूरे गुरु तो बात बढ़ेगी जिसको अधिकार हो नाम देने का नहीं तो किसी भी सत्र का चाहे आप ब्रह्मा की साधना करते हो चाहे विष्णु की चाहे शिव जी की चाहे ब्रह्म की आपको उसके सत्र का भी गुरु चाहिए और उनसे क्या लाभ है वो आपको पता ही लग जाएगा। फिर आप पूर्ण संत परम अक्षर ब्रह्म की साधना ही करोगे तो उसका भी पूर्ण ही संत चाहिए पूरा ही मार्गदर्शक चाहिए तब लाभ होगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, तय पूछो वेद पुराण। फिर बताते हैं कि जैसे बोले आदमियों तुम, वैसे ही कोई मंदिर में घंटी पीट आवे है, कोई आप गीता जी का पाठ कर रहा है, कोई किसी के कहते हनुमान का व्रत रखने लग गया, जैसे दास पहले करता था, कोई गुरु नहीं था, जैसे भी प्रेरणा किसी से मिली, भाई हनुमान चालीसा कर ले, हनुमान चालीसा करने लग गया 7 बार, मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, मंगलवार का व्रत शुरू कर दिया, गीता जी का रोज पाठ करेगा, अध्याय का किसी से सुना तो वो अध्याय का पाठ शुरू कर दिया, जैसे ऐसे जैसे ये थी हमारी मनमुखी साधनाएं। तो गुरु के बिना जो साधना हम कर रहे थे पहले, तो साधनाएं गलत, और फिर वो साधना ही शास्त्र विरुद्ध थी तो भी यूजलेस। फिर परमात्मा क्या समझाना चाहते हैं कि अभी राम कृष्ण से कौन बड़ा, तुम राम कृष्ण को तो सुप्रीम पावर मानते हो, अब आपके विधान अनुसार, आपके ज्ञान अनुसार राम कृष्ण से कौन बड़ा तुम्हारे दृष्टिकोण से। तो उन्होंने भी गुरु कीन और तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा आधीन। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को गुरु बनाया। यहां आपने सुना है कि श्री कृष्ण जी के गुरु संदीपनी जी थे, संदीपनी जी तो टीचर थे, अक्षर ज्ञान कराने वाले, और आध्यात्मिक गुरु जो थे वो दुर्वासा जी थे। कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हें भी गुरु कीन और तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा आधीन। यानी गुरु जी के सामने चाहे वो भगवान अवतार थे, तीन लोग के मालिक भी थे, राजा भी थे, तो भी गुरु और शिष्य का नियम नाता ऐसा ही होता है कि वो भी गुरु जी के सामने नतमस्तक होते थे, मत्था टेकते थे। फिर क्या बताते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, भाई लाग्या हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। सुखदेव ऋषि जी मनमाना आचरण करता था, अपने पिछले पूर्व जन्म के संस्कार पुनों के आधार से वो आकाश में उड़ जाता था, ऐसी सिद्धि थी। उन कोई गुरु धारण नहीं कर रखा था, और वो श्री विष्णु जी के लोक में चले गए, वहां रहने की इच्छा व्यक्त की। श्री विष्णु जी ने उसको कहा कि आपका कोई गुरु नहीं है, इसलिए आपको यहां रहना अलाउड नहीं है, आप जा सकते हैं, गुरु बनाओ, उनके अनुसार भक्ति साधना करो, तब हमारे लोक में आ सकते हो। कहते हैं राजा जनक गुरु किया, फिर कीनी हर की सेव, सेव माने पूजा, कह कबीर बैकुंठ में वो उलट मिले सुखदेव। तब स्वर्ग तक भी जाने का कार्य, जाने की व्यवस्था सुखदेव जी की उस समय हुई जब उसने राजा जनक से उपदेश लिया, साधना की, गुरु बनाई। अब परमात्मा क्या कहते हैं, भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। पुनात्मा एक एक सेंटेंस में बहुत गुड रहस्य है इस सूक्ष्म वेद की वाणी में, सचिदानंद घन की वाणी में, कबीर परमेश्वर की वाणी में। अब जैसे गुरु गोविंद, गुरु तो गुरुजी और गोविंद भगवान, कहते हैं एक तरफ गुरुजी हैं, एक दूसरी साइड परमात्मा खड़े हैं, परमात्मा आप ही प्रसन्न कर रहे हैं, आप ही उत्तर दे रहे हैं कि तुम किसको प्रणाम करोगे, किसको पाया लगोगे, उत्तर दे रहे हैं, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दिया मिलाए। तो मुझे, मैं तो अपने गुरु जी के चरण छूंगा जिसने भगवान मिला दिया ना। पहले मैं फिरुआ ना था, धक्के खाता भगवान, कद देना मिला उन्हें। ये भगत कह रहा था जी आपसे उपदेश लिया मैंने, मैं बजरंग बली का पुजारी था तगड़ा। नाम लेने के एक हफ्ते के बाद हनुमान जी दिखे सपने में, नो बोला भगत मन छोड़ गया तेनो। मैं बोला पहलवान तू पहला ना दिखा मैंने कदे भी, जब सारी कितने दिन हो गए गोडे रगड़ते ने, मैं छोड़ गया कोई ना भगवान के शरण में चला गया। ये तो उसकी कल्पना ही थी, मतलब बात यही की यही सत्य मानना। तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद ही मिला है। पुणात्मा एक एग्जाम्पल है, जैसे हैंडपंप है, हैंडपंप तो गुरु जी समझ लो और उसमें से निकल रहा जल भगवान समझो। जैसे किसी ने एक गढ़ा पानी का भर लिया हैंडपंप से और कहीं घर पे या कहीं खेत में मजदूरी में दुकान पे कहीं भी वो कार्य कर रहा है, जब तक उस गड्ढे में जल है नो प्रॉब्लम, डोंट नो वरी, और जब वो जल समाप्त हो जाए है चिंता बनती है, प्यास सताती है, तो कहां जाता है हैंडपंप के पास। उस हैंड पंप से फिर अब मटका भर लेता है गड़ा और फिर आनंदित हो जाता है। तो पुण्यात्माओं जब तक आप जी के पूर्व जन्म के भरे हुए घड़े यानी पुण्य आपके साथ हैं तब तक आपको नो प्रॉब्लम, आपने कोई चिंता नहीं, आप खूब उसने कुकरे पियो कैसे खिंडाओ, आपके पुण्य हैं। जैसे कोई अच्छा पुण्यकर्मी प्राणी है, अच्छी पोस्ट मिल गई, खूब गुटी सूटी लावर लंबी सिगरेट लाकर टोर बनावे, मांस खावे, कितनी बकवाद घट ले, क्योंकि वो अभी जल शेष है। जब वो जल खत्म होगा जब पता लगेगा उस भाई ने आंख लिकड़ाऊंगी, ऐसी ब्रैन माटी शुरू हो जाती है, सारी उम्र रोता है। फिर लास्ट में परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमन करे फिर दुख काहे को होई। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब सुख में तो बकवाद कर ध्यान रहे, आप अपने किसी भी रिश्तेदार के पास जाते हो, मित्र से मिलते हो, सहेली से मिलती हैं बहन बेटियां, तो हमारे भाई हमारे बच्चों का पहला कर्तव्य होता है उनको ये समझाने का कि आप नाम लो भक्ति कराया करो, तो वो कहते हैं भक्ति हम करते हैं, फिर ये चेष्टा करते हैं उसको वेरीफाई करने का, डिफाइन करने का कि ये भक्ति ऐसी है ये ऐसी है, तो वो कहते ना हमने तो यह ठीक सा है, बढ़िया ठीक काम चल रहा है हमारे तो ठाठ कर रखे। अब उन्हें न्यूना बेरा बोले आदमी ये ठाठ से थरे पहले की बैटरी चार्ज है, वो पिच पहले का भरा हुआ पानी जल तुम्हारे मटके में है, और जब ये मटके का पानी खत्म होगा जब बेरा पटेगा। अपने आत्माओं जिस व्यक्ति पर आपत्तियां शुरू हो जाती हैं, तो क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद यो मिलाए। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर हरि के रूठ त्या गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे जिसका वो मटके का पानी खत्म हो गया तो उसका राम रूस गया। अब जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्तियां शुरू होगी, एक से एक आपत्ति आ रही है, वो खुद कहता है कि मारा भगवान रूस गया, मारा तो राम रूस रहा है, हैं दो मैंस मर गई, एक बालक लड़का मर गया, ऐसी हानि होगी, फलाना काम बिगड़ गया, बच्चा बीमार हो रहा है, तो कहते महाराज राम रूस गया। अब राम रूस गया तात्पर्य जैसे वो गढ़े का पानी खत्म हो गया, अब गढ़े का पानी खत्म हो गया तो उसका विकल्प क्या है कि हैंड पंप पर जाइए और फिर उसको सेवा करें उस हैंड पंप की, वेंडर ने अलावा और वो पानी निकाल लीजिए। और यदि आपने वो जल हैंडपंप खराब कर दिया, हैंडपंप का हमारी लात गिर गिर दिया ठाक एक तरफ ने, वो आपका गुरु रूठ गया। अब गुरु रूठ गया यानी हैंडपंप टूट गया, खराब हो गया, तो जल नहीं मिल सकता। आपके मटके में जल खत्म हो गया तो हैंडपंप से भर जाइए, हैंडपंप को सुरक्षित रखिए, उसको रुसाइए मत, ना खराब मत करिए, तो फिर तेरा काम चला रहेगा। कहते हैं कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जावे, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। अब आप समझ गए होगे अच्छी तरह कि जैसे जल खत्म हो गया मटके में, हैंडपंप तो भर लिया, अरे हैंडपंप ही खराब कर लिया तो मैंने उसकी केयर टेक करी नहीं, फिर वो गुरु रूठ गया। अब गुरु रूठ गया तो पानी नहीं मिला, भगवान नहीं मिला, और जल नहीं मिला तो सात आएगी, मौत को मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जा, जैसे आपके पुण्य क्षीण हो गए, दुर्गति शुरू होगी, आपत्ति आने लगेगी, तो पूर्ण संत की शरण में फिर जाओ उस हैंडपंप के पास, और वहां सेवा कर उसकी, जैसे वो जिससे वो पानी निकले उस तरीके से उसको खुश कर, और फिर अपना मटका फिर भर ला और फिर सुख हो जाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कहते एक तरफ हैंडपंप है, एक तरफ मटके में जल, वो भगवान है, अब किसको पसंद करोगे? अंडरस्टूड है। कहते हैं बलिहारी नलका जिसने जल प्राप्त करवा दिया, और जल हैंडपंप ठीक है तो कितना है भगवान ले लिया, कितना जल भर लिया उसमें, ये ऐसा ही विधान है प्रभु का। तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर ही कोई कार्य करना चाहिए, नहीं तो दौड़ में लठ मारन का। परमात्मा कहते हैं एक हाथी के पैर में, एक हाथी के पैर में सब जीवों की पैड़े, सार शब्द चीने बिना या दुनिया मारे खेड़े। टक्कर मारते अंडे हैं उस वास्तविक ज्ञान को ना प्राप्त करके, कोई मंदिरों में जाते हैं, कोई मस्जिदों में जा रहे हैं, कोई तीर्थों पर जा रहे हैं, कोई हठ योग कर रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं, कोई व्रत रख रहे हैं। अब बिना ज्ञान के डले कैसे ढोते हैं? एक बार एक बहन पहले किसी दूसरे पंथ से संबंधित थी, दुखी गणी होगी, फिर यहां दास के पास करौथा में किसी उसकी बहन भाई के कहने से आई, नाम ले लिया, बहुत सुख हुआ। फिर उसने अपनी बहन से चर्चा चलाई कि आप नाम ले लो ऐसे ऐसे, तो वो फिर समझा बुझा के ले आई। जब थोड़ी संगत होती थी हम काफी देर बैठे रहते थे, पूरी डिस्कस से समझाया करते थे, अब तो हमने सीडी बना दी है, इसको देखो सुनो समझो अच्छी तरह समझ सकते हैं बच्चे। तो वो ना मना कर गई, बोली जी मैं नाम ना लूं। मां क्यों नहीं ले बहन बता? कि मैं तो जो साधना करती हूं न छोड़ू को ना। और क्या दुख बता रही थी? कि मेरा पति शराब पीता है और रोज जिस दिन शराब पी का आवे रोज मेरी देही तोड़े, रोज पीटे, गली में खड़ा कर दे, रोटी बनाकर धरू लात मार दे। यानी उसके उस दिन 12-1 बजे तक इतना पढ़ना लेट सो नहीं जाता, इतना वो ड्रामा, और मेरी साथ रोज रहे, कुछ तंत्र मंत्र बता दो वो ठीक हो जाए। हमने कहा भी नाम ले ले, नाम लेने से परमात्मा सुनता है, सद्बुद्धि दे देगा आपके पति को भी। बोले जी साधना मैं करती हूं, मैं छोड़ वो साधना नहीं छोड़ सकती। मैंने उस पूछा भी क्या साधना करती है? उसने बताया मैं शुक्रवार के व्रत रखती हूं, और भी दो चार साधना बताई। तो मैंने उससे पूछा कि शुक्रवार के व्रत की कथा का बेरा है तने? जो बोली इतना इतना बेरा, मैंने गणा सा था। मैं कहा सुन ले, शुक्रवार की संतोषी माता का व्रत है ना कहा जी, उसके व्रत की कहानी है कि एक बहन का पति किसी दूसरे अक्षेत्र में धन कमाने गया था और वो 10 वर्ष को नहीं आया। उसने संतोषी माता दिखी, उसने कहा तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले और फिर तेरा पति आ जाएगा। उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखने शुरू कर दिए। जब 16वां व्रत उसका आया, उसी दिन उसका पति घर लौट आया। मैं बोला ना लायक, ये फल है 16 शुक्रवार के व्रत का? शुक्रवार के व्रत का कि पति भूल जा और घर तो बाहर चला जा तो उल्टा आ जा, और तेरा पति रोज दे ही थोड़ा रोज गरना और तो फिर भी शुक्रवार के व्रत रखे, तने तो शुक्रवार के रखने ना चाहिए, एक आज राज की तौर पड़ा रहो। फिर वह पहले तो खूब आशी, फिर सोचूंगी देखूंगी है कर्मीन, ये भी सोचेगी देखेगी। तो ऐसे अपनी मनमुखी साधनाएं करने से आपको कोई भी लाभ नहीं हो सकता। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको उनकी न तो कोई गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही कोई सुख होता है। अपुनात्मा, आप सदग्रंथों को पढ़ते थे लेकिन समझते नहीं थे, केवल रट्टा लगा रखा था। गीता जी का एक पाठ नित्य पढ़ना है, एक अध्याय, हम यहां तक सीमित थे। नहीं, सदग्रंथ को पढ़ने मात्र से ही नहीं, उसके अंदर क्या लिखा उस पर अमल करने से लाभ होगा। देखिए श्रीमद् भगवद गीता ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23, 24 इसमें कुल मंत्र है, देखिएगा अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, मनमानी पूजाएं करता है, वह न तो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। यूजलेस हो गया, यानी कोई लाभ नहीं इन साधनाओं के करने का। फिर क्या बताया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है ते पूछो वेद प्राण। सबसे पहले गुरु होना चाहिए और गुरु भी पूरा हो, नकली गुरुओं से बात बने को नहीं। एक बार एक बहन हमारी, जो नाम ले रखा था, उसके पड़ोस में एक माई कहने लगी बेबे मैंने एक गुरु बनाना है, मन गुरु बता बढ़िया सा। तो वो कहने लगी आप हमारे गुरु जी से नाम ले लो, करो था चलो रोज तक की थे। वह बोले ठीक सा मैं नाम दिवाला। वो आ गई और हमने जो भी मर्यादा बताई उसने हाँ जी सारे सारे ठीक है, सब नियम करूंगी, नाम ले लिया, नाम लेकर आ गई। फिर वह महीने दो महीने आइए को नहीं, 3 महीने हो गए। तो ऐसे ही वह बहन आई, जब उसको मैंने कहा एक तेरे साथ वो बहन आई थी बेबे, वह ना आती। बोला जी पता नहीं मैं जाऊंगी। वह गई, उसको पूछा कि आप गए नहीं, क्या बात होगी, चलते नहीं? बोली मैं ना जाऊंगी, बड़ा क्रोध है। क्यों? बोला मन तक गुरु बनाना था, बना लिया। नो सुना है गुरु बिन मोक्ष ना होता, गुरु बन गया। अनु बोली तो सारी पूजा करे, पूजा की ये करूंगी, गुरु गुरु बनाना था मनता है। बताइए नकड़े ती समझावे, कहां तक बुद्धि ठावे इनकी, इतने इन नकली गुरुओं ने, नकली सिद्धांतों ने इतना बिगाड़ दिया मानव समाज। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े।